सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कर्णवास जेठवदी 14 संवत 1995 सात और बहत्तर 79 79 वर्ष हो गया, 77 वर्ष, 28/5/38। इतनी बढ़िया बात है, पढ़ते ही 4-5 लाइन देखते ही कि सेठ जी ने आगे रो आज को समय दिख तो बात का ही है। 5-7 लाइन पढ़ी, पढ़ते आगे पढ़ना ही बंद कर दी, कितनी भी आना आगे रे दिखती है। सच्ची नियत वाले जो भाई हैं उन्हें तत्परता के साथ वैराग्य युक्त चित्त से कटिबद्ध होकर साधन भजन में लग जाना चाहिए। आजकल वैराग्य की भावना नहीं, दिखावटी की भावना ज्यादा हो गई। दिखावे में लोग साधन भजन को बताते हैं पर इससे साधन भजन का प्रचार नहीं होता है, दंभ का प्रचार होता है। उनके मन में यह लगता है कि हमारे दंभ से हमारा नाम होता है, लोग हमको पूछते हैं, हमको धन मिलता है, क्या जरूरत है वैराग्य की, क्या जरूरत है भजन साधन की, ढोंग से काम चलता है। इस कारण से लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब क्या करें, सभी रकम के आदमी होते हैं, लोभी, दंभी, हरामी, कई रकम के। मैं नियम तो नहीं कहता हूं कि सारे ही ऐसे हैं, परंतु आजकल कोई कहने सुनने वाला नहीं है, इतना पाखंड फैल रहा है। आओ अच्छे सत्संग पहले बैठो, पहले खूब भजन साधन करो, अपने अंदर दंभ है, कपटता है, राग है, द्वेष है, दिखावटीपना है, ये आपको पहले बुरा लगे और आप स्वयं इस तत्व की तरफ चलो, उसके बाद आप लोगों को कहो। आपके आचरण में आए बिना बहुत बुरा लगता है। सत्संग में आने में, सत्संग सुनने में यदि बुरे आदमी आते हैं तो ये कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनकी बुराई सत्संग से ही निकलेगी। बिना सत्संग कैसे सुधरेंगे? परंतु सत्संग के नाम पर कोई दंभ करता है, उस आदमी का दंभ निकलना बड़ा मुश्किल है। कोई न कोई स्वार्थ के बिना आदमी दंभ करता नहीं है। कई प्रकार के स्वार्थ होते हैं। स्वार्थ का अर्थ केवल कंचन और कामनी नहीं है, मान बढ़ाई से ज्यादा दंभ को गुंजाइश मिलती है। कहीं मनुष्य को मान बढ़ाई मिलती हो तो वो पैसा खर्च कर देगा, मान बढ़ाई उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनय करता हूं कि प्रारंभ में ये मान बढ़ाई साधक को अमृत के समान लगती तो है, परंतु कल्याण चाहे उसे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को पढ़ाई जिसको अच्छी लगती है वह तो दंभी और पाखंडी है, इसमें मुझे तो कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। जहां मान बड़ाई प्रतिष्ठा की आकांक्षा है वहां आसुरी संपदा को घुसने के लिए पूरा खुला हुआ दरवाजा मिल गया है। यदि बड़ा दरवाजा खुला हुआ हो और एक को अंदर जाना हो कैसे संभव है, वहां कई जने जाएंगे। ऐसे ही आसुरी संपदा को प्रवेश मिलता है तो बहुत सी आसुरी संपदा इकट्ठी हो जाती है, जो वास्तव में अपने आत्मा का कल्याण चाहे उसको तो बाहर से भी ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे उसको मान बढ़ाई मिले। लोगों में प्रशंसा होती है, सुनते हैं अच्छा लगता है, और प्रशंसा बढ़े और प्रशंसा बढ़े और लोगों में नाम हो और लोगों में हमारी प्रतिष्ठा हो, हमें दया आती है, ऐसे मनुष्यों पर दया आती है और दया आनी भी चाहिए। जो पुरुषों को स्त्रियों से, स्त्रियों को पुरुषों से, हां, और दूसरी बात बताता हूं, पुरुषों को तो स्त्रियों से और स्त्रियों को पुरुषों से खूब जमकर परहेज रखना चाहिए। इस बात में जरा सी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जो अच्छे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, कैसे भी श्रेष्ठ पुरुष हों, बहुत ऊंचे हों, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं, परंतु मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दर्शन भाषण संतों का करो, परंतु भाषण की जरूरत पड़े तो माताओं बहनों को नीची दृष्टि रखते हुए बात करनी चाहिए। कितने ऊंचे महात्मा हो लेकिन दृष्टि नीचे रखनी चाहिए। ऐसे ही महात्मा लोग तो समझते हैं, वे माता बहनों का खूब आदर करते हैं, परंतु आंख से आंख मिलाकर कभी किसी भी माता बहन से बात मत करो। सत्संग की बात करनी हो तो खूब बात करो, लेकिन जितनी कम कम में काम चल जाए उतनी बात करो, इसके सिवा परहेज रखो। आपको चाहे कितना ही ऊंचा महात्मा दिखे लेकिन इसमें मर्यादा रखना, अपने लोगों का विशेष ध्यान होना चाहिए। कभी भी माता बहन या कोई भी स्त्री हो, साधक को या महात्मा को भी एकांत में अकेला नहीं बैठना चाहिए। अनुभव से समझो, चाहे वचनों से समझो, चाहे शास्त्रों से समझो, पांच वस्तुओं से परहेज नहीं रखता वह साधक साधन में एक सूत भी आगे नहीं चल सकता। कितनी बढ़िया बात है, पांच चीजों के लिए विशेष ध्यान दिया है। एक तो रुपयों का लोभ, एक स्त्री का संसर्ग, बात करना, बैठना, खूब हंसी दिल्लगी करना, ये नहीं। एक मान बढ़ाई की इच्छा कि मेरा मान हो, बढ़ाई हो, उत्कर्ष बढ़े, ये इच्छा। एक आराम से रहे, शरीर को खूब आराम मिले, और चौथा आलस्य। ये पांच चीजें बड़ी खतरनाक हैं। जो कल्याण चाहे उसे इन पांचों से परहेज रखना चाहिए। जो इन पांच से परहेज रखे, इन पर विजय करने वाले के कल्याण में कुछ भी शंका नहीं है, और इनके बिना परमात्मा की कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यदि किसी को कोई महापुरुष की कोई बहुत बड़ी भारी कृपा मिल जाए तो ये बात दूसरी है, ऐसा होता नहीं है। किंतु जनरल बात यही है, सेठ जी ने शब्द दिया जनरल, जनरल बात यही है। अतः जिसे कल्याण की कामना हो उसे इन पांचों से बचना चाहिए। जैसे कोई आदमी है, वो बैठा है, इधर भी सांप है, इधर भी सांप है, इधर भी सांप है, पीछे भी सांप है, अब क्या करे, पांच सांप और एक बीच में बैठा सांप, तो वो सांप के चक्कर में फंस गया, वो डसेगा ही। इसी प्रकार से इन पांचों के चक्कर में जो आ गया, इन पांचों को सांप से भी ज्यादा खतरनाक समझो। इन विषयों की जिसको कामना है वो तो पूरा फंसा हुआ है। इन पांचों को कैसे, पांचों से कैसे बचा जाए, तो हम आपको एक अस्त्र देते हैं। वो अस्त्र आपके लिए बहुत काम का है। जो भी कोई उसको काम में ले, वो अस्त्र बहुत काम का है। उसको अपने पास में रखो। जैसे जिसके पास बंदूक होती है उसके पास कोई नहीं फटकता, ऐसे ही ये पांचों जिसके पास में है, ये पांचों पास में नहीं आवे, ऐसा जो शस्त्र है वो आप ध्यान से सुनो। वो अस्त्र यदि कहीं आपको मिले तो आप ला नहीं सकते हो, वो अस्त्र आपको सत्संग में मिलता है। आपके मन में लगता है कि वो अस्त्र क्या है, तो हम बताते हैं वो है वैराग्य। आप वैराग्य के रास्ते पर चल करके तो देखो, ये संसार के सारे बंधन कटते, अपने आप कटते चले जाएंगे। जैसे कोई मशीन है, दांतेदार मशीन है, और एक बहुत बड़ा पेड़ का तना है, मशीन चल रही है, उसमें उस तने को दे दो, वो उसको तत्क्षण टुकड़े टुकड़े करके छोटा कर देगा। ऐसे ही वैराग्य की धार में इतना तीखापन है कि वो पास में आते ही ये दोष कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या आएंगे ही नहीं। गीता जी में लिखा है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम्। फिर उसका ये फल होता है, निर्माण मोह जितसंग दोषा। वास्तव में ऐसे पुरुष ही परमात्मा की प्राप्ति के लायक हैं, वे ही प्राप्त कर सकते हैं। उस स्थिति को वे ही जानते हैं। वो अपने भी प्राप्त कर सकते हैं। करना ही क्या है, वैराग्य रूपी शस्त्र मिल गया, और करना ही क्या है। वैराग्य एक ऐसी वस्तु है, उससे वासना आदि जड़ें समूल नष्ट हो जाती हैं, सारे दोष हट जाते हैं। वैराग्य हो गया तो सारी उपासना हो गई। जिस अमृत के सामने देवताओं के भोग भी बड़े तुच्छ हैं, अब क्या कहूं, छोटे मुंह बड़ी बात होती है। वह परमात्मा का जो ध्यान है, उस ध्यान के सामने इंद्र के भोग और अमृत भी मेला दिखता है। वाह सेठ जी, परमात्मा का प्रतिबिंब है, वह सूर्य और सूर्य के प्रतिबिंब की तरह है। आकाश में सूर्य है, नीचे पानी में दिखता है, वो पानी में दिखने वाला प्रतिबिंब है, ज्यों का त्यों दिखता है। ऐसे परमात्मा के स्वरूप का, निर्गुण का, सगुण का ध्यान करें, वो ठीक परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे हृदय में उतरता है। वाह, वो हृदय में उतरता है, प्रतिबिंब से ही बिंब पकड़ा जाता है। इसलिए ध्यान के द्वारा परमात्मा को ये मनुष्य पकड़ सकता है। दर्पण में भी छाया से वह पकड़ सकते हैं कि ये छाया कहां से आई। इसी तरह छाया यानी ध्यान तक जो पहुंच जाता है, वो फिर परमात्मा तक पहुंचने में देर नहीं कर सकता। फिर तो एक छोटा सा काम रह जाता है, नौका किनारे आकर यदि डूब जाए तो कैसा लगता है, बहुत हानि होती है। सब भाइयों को जोर से साधन करना चाहिए। अपना यहां से जाने का समय भी कम है, मृत्यु नजदीक है, इसलिए जिस किसी प्रकार से अंदर से पूरी चेष्टा के साथ साधन करना चाहिए। संसार में परमात्मा की भक्ति का प्रचार नहीं होता है, इसमें बाधक दंभ है। अपनी आत्मा के कल्याण में उन्नति नहीं होने का कारण है अपने अंदर कई प्रकार के दोष हैं, जो अभी तक ध्यान में नहीं आ रहे हैं, या ध्यान में आते हुए भी हम उन दोषों को निकालना चाहते नहीं हैं। जो झूठे भक्त हैं या ज्ञानी बने हुए, सिद्ध बने हुए फिरते हैं, उनसे सावधान रहो, क्योंकि वे भक्ति के या ज्ञान के मार्ग में और उसके प्रचार में विघ्न करता है। ख्याल करना चाहिए कि भगवान उसको मदद देते हैं जो इस मार्ग में चलता है, फिर आपको रोकने वाला कौन है। आप क्यों हर किसी के चक्कर में पड़ो। बहुत से ऐसे साधु महात्मा हैं जो शास्त्र की दृष्टि से ठीक हैं, उनका आदर करो। आज यदि कोई साधु किसी भाई से मिलने आता है तो लोग प्रेम से आदर तो दूर रहा, उनसे बात करने की ही इच्छा नहीं करते। प्रेम से आदर से उसको रखें या नहीं, उनसे बात करने की इच्छा नहीं करती। क्यों? उनके मन में डर रहता है कि इस वेश के अंदर साधु बना हुआ कोई ठगोरा तो नहीं है। अच्छे साधु से भी लोग चमकते हैं। चमकने का मतलब है प्रसिद्ध होना नहीं, चमकने का मतलब है डरते हैं। झूठे बने हुए साधु ही सच्चे संतों के तिरस्कार में कारण बनते हैं। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ऐश्वर्य, मान, भोग, प्रतिष्ठा प्रवेश करके उनका विनाश कर डालते हैं। लाओ इधर से लाओ, उधर से लाओ, जोर जोर से मांग करते हैं। अच्छे पुरुषों को सावधान रहना चाहिए। लोगों में भी कैसी आदत है जो खूब मांग टांग करके आलीशान भोग पदार्थों का संग्रह करते हैं, उनके पीछे पीछे फिरते रहते हैं और वे सोचते हैं कि देखो हमारे इतने पीछे लोग हैं, हम भी कुछ हैं। हमारा यदि बस चले तो दंभी पाखंडियों को किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा उच्चिदेयु इमे लोका न कुरियाम कर्म चेद अहम्। यदि मैं उचित कर्म न करूं तो लोक के अंदर मर्यादाओं को उच्छिन्न कर देते हैं, ये सब लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों? इसी दंभ के कारण। दंभी आदमी को लोग बहुत बड़ा धर्मात्मा मान लेते हैं। भगवान का यही कारण है कि भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता प्रेस संस्था है, सब आदमी हम अच्छा ही समझते हैं। दो चार वर्ष में इसमें कौन आदमी रहे, कैसी अवस्था हो, कौन जाने। आज के 100 वर्ष के बाद तो अपने में से कोई रहने वाला नहीं है, उसके बाद उसका कौन अधिकारी रहेगा, क्या दशा होगी, कुछ पता नहीं है। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने समझी है, देखी है, वे सब अच्छे रूप में तो बनती हैं, परंतु फिर धीरे धीरे उनके निम्न श्रेणी के लोगों का प्रवेश होने से पतन होते देखा है। इसलिए भगवान का कहना है कि आदर्श खूब उच्च रखना चाहिए। वेदों में यज्ञ के नाम से हिंसा का प्रचार कर दिया, लिप्सा भोगेच्छा के कारण ये सब होता है। यदि वे लोग जो दंभी हैं वो कह दें कि हम तो अपनी भोगेच्छा की पूर्ति के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, तब तो इतना दंभ नहीं फैलता। परंतु वे पूजा का यज्ञ के नाम से अच्छे कर्म का प्रचार करते हैं, हम ऐसा प्रचार कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे करके यज्ञ में बैठते हैं। ये गौतम बुद्ध का इसीलिए अवतार हुआ। ये क्या धर्म जो अपनी पेट पूर्ति के लिए हिंसा करते हैं उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, किंतु अब जो बौद्ध धर्म की संस्थाएं हैं उनका उद्देश्य दूसरा ही हो गया। अब तो वह पुरानी संस्था हो गई, अपने तो सच्चे आस्तिक बनो। सच्ची वस्तु का कोई नाश नहीं कर सकता। अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष्यैव च। सत्य वस्तु कितनी चोट पड़े, चोट ही पीछे हट जाएगी, सत्य नहीं हटेगा। वहां कोई भय नहीं है, वहां निर्भयता है। जो दंभाचार फैलता है उसे नाश करने के लिए सच्चे आस्तिकता के सिवाय और क्या उपाय है? आस्तिकता अपने रखो, दंभाचार अपने आप नष्ट होगा, अपने में तो आएगा ही नहीं। क्योंकि धर्म में कोई सारे पाखंडी थोड़ा ही है, पर पहले दंभ के द्वारा लोगों में पूजे जाते हैं, फिर उनकी पोल खुलती है, पोल खुलती है तो फिर सारे धर्म वालों को लपेट लेते हैं। सुनना भाई, बंद करना। थोड़े से पाखंड के कारण से सारे धर्म के लोग अपकीर्ति के पात्र होते हैं। लोगों की ऐसी दृष्टि है, एक की गलती से सबको गलत मानते हैं। परंतु जो धर्म के पालन में लगे हुए हैं, कितनी कोई निंदा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि वे तो व्यक्तिगत निंदा चाहते हैं कि हाँ करो, हमारी निंदा करो। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु वंतु। नीति निपुण लोग यदि निंदा करें उसको वे अच्छा मानते हैं। ये कवच है हमारे साधन भजन का कवच। पर ये बात तभी पैदा होगी जो सच्चाई से रहेगा। पुरानी संस्थाओं में मरम्मत की जरूरत होती है, पुराने मकान की मरम्मत करते ही हैं। ऐसे ही हमारे धर्म की मरम्मत करो। उसका उपाय क्या है? आप हम सभी खूब जोर से भजन ध्यान करेंगे तो ये जो धर्म खंडहर हो रहा है इसकी रक्षा करो, मरम्मत होगी। लोग कहेंगे कि कलयुग है, धर्म तो नष्ट होगा, ये तो बड़ा कठिन काम है, घर का काम करें कि जोर से भजन करें। हमारी बात सुनो, सतयुग में जो पास आदमी होता वह एमए जितना था, आज जो थोड़ा सा परीक्षा में पास होता है वो सतयुग में, और आज का जो एमए किया हुआ होता है वो सतयुग वाले को ज्यादा ज्ञान होता था। एमए जितना था, किंतु अब मैट्रिक जितना भी नहीं है। एमए किए हुए होते, मैट्रिक जितना भी ज्ञान नहीं। यदि उतना ही हो तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि इधर मान बढ़ाई इसमें लग गया, उधर आयु कम होने लग गई, इधर भोग हृदय में बैठे हुए हैं, ये सब जीवन को ह्रास की तरफ ले जाते हैं। इसलिए कलयुग के अंदर धर्म की स्थापना बड़ी सुगम है। आप कोई चिंता न करें, भगवान के नाम का जप, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इनमें लगे रहें। श्रवण से कीर्तन, कीर्तन से कल्याण, स्मरण से कल्याण, एक को पकड़ लो तो आत्म कल्याण है, फिर श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों बराबर तीनों पकड़ लें तो फिर बात ही क्या है। श्रवण से कीर्तन, कीर्तन से स्मरण, एक एक से बढ़कर है। स्मरण में हेतु है कीर्तन, कीर्तन में हेतु है श्रवण। पावर देखा जाए तो ध्यान का पावर सबसे अधिक है। यदि वो नहीं हो तो कल्याण करने में भजन, भगवान का भजन भी काफी है। आप तो नाम लेते रहो, यदि वो भी आपसे निरंतर नहीं होता है तो फिर सत्संग करो। वैसे तो सत्संग का दर्जा भजन से अधिक तो नहीं है, किंतु भजन में कारण जरूर होता है। भजन के साथ सत्संग होता है तो फिर सत्संग का दर्जा ऊंचा हो जाता है। भजन करे और सत्संग करे, भजन करे और सत्संग करे, तब सत्संग का दर्जा ऊंचा हो जाता है। सत्संग के बिना भजन नहीं बनता। कोई कहे हम तो सत्संग सो करते हैं, हमसे भजन नहीं होता, क्या बात है? तो इसको भी ध्यान से समझो। सत्संग करे किंतु काम में नहीं लावे, तब। और एक दूसरा है जो भजन ही करता है, सत्संग नहीं करता, तो भी वो भजन करने वाला तो ऊंचा है। ध्यान करता है और दूसरा केवल जप करता है, उनमें ध्यान करने वाला बड़ा है। देखो सबसे मेरी बातें मिलती नहीं है, बहुत कीमती बातें हैं। एक न्याय से ध्यान से भजन, भजन से सत्संग बड़ी है। दूसरे न्याय से सत्संग से भजन, भजन से ध्यान बड़ा है। दादा है, बाप है, लड़का है। दादा का 10 रुपया महीना, बाप का 100 रुपया महीना, लड़के का 1000 रुपया महीना, तो वर्षों में तो वे दादाजी बड़े हैं, किंतु पावर के कारण से वो लड़का बड़ा हो गया, उसको 1000 रुपया महीना मिलता है। ऐसे सत्संग है ये दादा है, भजन है ये जो है बाप है, माने दादा का तो बेटा है, और ध्यान का बाप है, ध्यान पुत्र है। तो ध्यान 1000 रुपये कमाता है, भजन 100 रुपया कमाता है महीने का। उस जमाने में भाई 77-78 वर्ष पहले 1000 रुपया महीना कितनी बड़ी बात थी। तो कहते हैं सत्संग से, सत्संग है ये दादा है, भजन है ये बाप है, और ध्यान है ये पोता है, बाप का बेटा है, परंतु 1000 रुपये महीना कमाता है इसलिए बड़ा हो गया। प्रणाम करेगा पोता तो कायदे में तो दादाजी बड़े हैं, पिताजी बड़े हैं, परंतु कीमत में कौन बड़ा है? ऐसे ही ध्यान लगता तो छोटा है, क्योंकि ध्यान पोता है, बेटा है, पर पैदा कितना करता है। और देखो फिर वे पेंशन पावे, दादाजी 10 रुपया महीने की फिर पेंशन मिले, फिर बाप को 100 रुपये कमाता है उसको पेंशन मिले, और जब ये पोता 1000 रुपया कमाने वाला उसको पेंशन मिले तो भी ये जीत में है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दादा और पिता हरामी है, ऐसा नहीं कहता हूं। मैं तो उदाहरण देता हूं, हम आपको यही कहते हैं आप भजन में ध्यान में विशेषता से लगो, इसी में ही आपका हमारा सबका कल्याण है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना